چراغی رو گفتم کشته گوسمانی مهارت آن ترکیند می سنده مندلی بارما این دیوینگ
क्या नाम था? नहीं पता। प्रसन्न हो गए। तो भागवत गुरु बहुत ही ऊंची कोटि के भक्त है। कभी कोई श्री किसने कुछ खाने के लिए दे दिया तो खाते थे, नहीं दिया तो आप लोग अभी यही भाव है, आपको तो नहीं मिले तो सादा लड़ते हो। तो भागवत पुरी ने एक दिन गोवर्धन की परिक्रमा समाप्त की थी। आप जैसे कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा किया है, एक दो तीन चार पांच छह और एक चार हवाई जहाज ले जाना पड़ेगा। और क्या आप सब गोवर्धन मालूम है? गोवर्धन पर्वत क्या है, कहाँ है? तो मानंद पुरी ने गोवर्धन परिक्रमा समाप्त की थी और गोविंद कुंड में वो विश्राम कर रहे थे। आप जब परिक्रम करो तो गोविंद कुंड में पांडे कहते हैं यह है मानंद पुरी की बैठक और वहां वो विश्राम कर रहे थे। एक बहुत खूबसूरत द्वार एक मटके में दूध लेकर ग्वाला कहने लगा, हे संत महात्मा, तुम थके हुए नजर आते हो, दूध पियो, मैं आता हूं थोड़ी देर में ये लोटा लेने के लिए, दूध पियो। महादेव पुरी ने इसे खूबसूरत बालक कभी नहीं देखा। वो उन्होंने पूछा उस बालक से, तुम्हें कैसे पता है कि मैं भूखा था? बालक ने कहा, मेरे गांव की औरतें जा रही थी कुएं से पानी लाने के लिए, आपको देखकर पहचान गए यहाँ भूखे हुए, तो दूध पी लो, मैं लौटता हूँ लौटा लेने के लिए। आनंद पुरी ने दूध पी लिया और वहां देख रहे थे लौटा लेने के लिए, वो बालक आया नहीं। पर आनंद पुरी को हल्की सी नींद आ गई और उस नींद में उन्होंने उसी बालक का दर्शन किया जिस बालक ने उनको क्या दिया था, दूध दिया। और उस बालक ने माधव पुरी से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मुझे मुसलमानों के हत्याचार से बचाने के लिए पुजारी ने छुपा दिया था एक गोपाल की विग्रह था जिसकी स्थापना भगवान के ग्रेट ग्रैंडसन ने की थी वज्र में। और जब मुसलमानों का राज्य था 600-700 साल पहले उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, कई मूर्तियों को उठाकर वो जयपुर ले गए। इसलिए देखे कि जयपुर में हिंदू राजा था और जयपुर का एक और नाम है गुप्त ब्राह्मण, और कई उन्हें उनके को छुपा दिया खोलकर। तो भगवान ने सपने में कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे छुपाया हुआ है इस स्थान में, मेरे को झाड़ियाँ हैं, तुम आकर मुझे यहाँ से उठाओ और मेरी स्थापना करो। तो दुखी हुआ कि वो बालक तुम्हें पता लग गया, वो बालक जो जिससे दूध आया था उस समय भगवान थे। भगवान ने बड़ा शोक का हुआ, मैंने भगवान से सेवा ली है, मैं आपको उसे क्या हम तो भक्ति में जुड़ते भगवान को, जो मैं सेवा करें जो इच्छा है वो पूरी करें, और अगर इच्छा पूरी नहीं करते तो हम भगवान से गुस्से हो जाएंगे। पर जो भक्त है शुद्ध भक्त वो भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता, वो केवल सेवा करना चाहता है। सेवा करना चाहता है क्या,
सेवा
ये नहीं हम आला गजा कर रहे हैं जिनके बदले में धंधे में इतना नफा होना चाहिए, ये बात होना चाहिए। तो तुम्हारे में कोई कोई शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने भगवान से सेवा दे दी और कोई उठे गांव वालों को उन्होंने सपने के विषय में कहा और सबने निर्णय कर लिया चलो जाकर देखते हैं उन सपने में भगवान ने कहा सच है या नहीं। तो बड़ी बड़ी कैंचियां मारी कैंचियों से झाड़ियों को कहा था और खोला 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 खोने पर वही हृदय गोपाल का प्राप्त हुआ जिस उम्र में भगवान ने अपनी विद्या था। भगवान ने उन्हें कहा उस वृंदा की स्थापना करो मुझे बहुत गर्मी लग रही है जब आप गर्मी के मौसम में मिट्टी के नीचे छुपाया जाए गर्मी तो लगी। तो आनंदपुरी ने दो दिन में पूरा प्रबंध कर लिया ठाकुर जी की स्थापना के लिए। एक बहुत बड़ा कोहनार का पत्थर था जिसका उन्होंने ऑल्टर बना लिया और ब्रज के सारे भक्तों को जोड़ दिया सेवा में। और आजकल जो आप देखते हो किसी का किसी की कितना वीर है कैसे देखते हो कौन कितना वीर है क्या है आपके निशाने कौन सी मोटर चलाता है कितना बड़ा मकान है कौन सी घड़ी पहनता है कौन से सूट पहनता है खरीदते हमको बड़ी मोटर खरीदते हैं अच्छे मकान बनाते हैं क्यों दुनिया को बताना चाहते हैं हमको कितने सफल है। तो आनंदपुरी इस दो दिन में सारा प्रबंध कर दिया भगवान की स्थापना के लिए और प्राचीन समय में जो धन है वो मापा जाता था ये देखकर कितनी खेती है और कितनी गाय है। और प्राचीन समय में लोगों के पास हजारों गाय होती थी और खेती होती थी आज खेती है क्या अब इंडिया में जाओ एक एक खेती नहीं मिलेगी। तो आनंदपुरी गोपाल की स्थापना की और ब्रज के जितने भी हस्ता थे गोवर्धन किसने खेती दी गाय दी और थोड़े समय में गोपाल के बड़े मालिक बन गए खेती और गाय। तो दो साल तक इस प्रकार से भगवान की पूजा चली और दो साल के बाद भगवान ने फिर सपने में आनंदपुरी को आदेश दिया। भगवान ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ आनंदपुरी तुमने मेरी स्थापना की है। स्थापना के लिए हजारों लोटे पानी के आए थे सारे ब्रजवासी जुड़े थे इसके बारे में। तो भगवान ने कहा मैं बड़े प्रसन्न हूँ और तुम्हारा आभारी हूँ पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है तो मेरे लिए चंदन लेकर आओ। चंदन जो है आपको पता होगा शरीर को ठंडा कर देता है इसलिए हम चंदन लगाते हैं गर्मी के मौसम में सर्दी के मौसम में नहीं क्योंकि सर्दी में शरीर ठंडा होता है। तो आनंदपुरी ने दो बंगाली पुजारी आए थे उनको दीक्षा दी ठाकुर जी की जिम्मेदारी सौंपी और वो चल पड़े कहाँ 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 के लिए चल पड़े ओडिशा के लिए गंगापुरी के लिए भगवान के चंदन लाने के लिए। आप लोग आप देखते हैं इंडिया आए हो कहा जब इंडिया आते हो फिर जाना हुए या बर्मा में भी आप कैसे जाते हो प्लेन में जैसे बॉर्डर में जैसे मोटरसाइकिल में पहले तो कोई नहीं जाता कोई जाता तो आनंदपुरी भगवान की खुशी के लिए गोवर्धन से उड़ीसा तक फैल गए। अंदाजा लगाओ उन्होंने ये नहीं कहा भाई इतना 1500 मील की यात्रा कैसे करोगे आपको बोला जाए राधा गोविंद जी के साथ प्रेम है आप भक्तों का कितने भक्तों का प्रेम है राधा गोविंद जी के साथ कितने सबका ताकि आपको बोला जाए राधा गोविंद जी के लिए 1500 किलोमीटर की यात्रा करो पैदल, करोगे? कितने लोग तैयार है? आपको कोई अच्छा देखेगा रंगून से भगवान को बहुत गर्मी लग रही है, रंगून में अच्छा कर दिया। अच्छा तो मान तो बोरी चंदन लेने के लिए चले और वहां जब आए उड़ीसा में तो वहां एक बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है गोपीनाथ का। ये कहा जाता है इस मंदिर में जो विवाह है उसकी स्थापना वो विवाह भगवान राम ने बनाई थी। जब भगवान राम प्रकट हुए थे द्वैत युग में, लेकिन वो सीता को कह रहे थे कि द्वापर युग में मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा और तुम इस रूप में, और उन्होंने राधा कृष्ण की मूर्ति बनाई। तो ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। तो महाद्वंद पुरी जब उड़ीसा में पहुंचे रेमुना में, तो रेमुना मंदिर में एक खीर बनाई जाती है भगवान के लिए, हमारे मंदिर में सुबह की बोले आरती के लिए तो बहुत अच्छी खीर खिलाई जाती है, बहुत अच्छी। ऐसे लगता है कि स्वर्ग से उनका भाई ये जो खीर बनती थी रेमुना के मंदिर में, इतना अच्छा खीर था कि उसका नाम हो गया था अमृत अकेली। अमृत अकेली का मतलब पान में क्या है? अमृत जो कि स्वर्ग से बनकर आता है। तो महादेव पूरी इच्छा थी कि मुझे ये खीर चखने का मौका मिले। तो नियम ये है कि जब आप भोग बना रहे हो भगवान के लिए, आपका भाव होना चाहिए कि मैं भगवान की खुशी के बना रहा हूँ, और जब भगवान खा लें भोग को फिर हम निकाल कर ले आते हैं, फिर हम खाते हैं। जैसे हम रसोई बनाते हो भगवान के लिए, तो वो रसोई को किसी को नहीं देखना चाहिए, इसके लिए हम ढक कर ले जाते हैं भगवान के पास। तो महादेवपुर की इच्छा, मन में इच्छा थी कि अगर मुझे ये खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं जब लौटूंगा अपने गोपाल को भी ऐसे खीर खिलाऊंगा। जैसे कि भौतिक संसार में आप एक दूसरे से सीखते हो कुछ, अच्छा काम कर रहा है आप सीखते हो, तो भक्ति में भी ऐसे ही है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब बगीचा का मंदिर साफ कर लेते तो अनेक भक्त जुड़े थे, पर जो ज्यादा खीर ज्यादा धन इकट्ठा करते थे वहाँ पर गुरु को जिम्मेदारी देते थे दूसरों को, जो कम धन इकट्ठा करने उनको सिखाने के। तो महादेवपुरी के मन में इच्छा थी कि अगर मुझे खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं लौट कर अपने गोपाल के लिए क्या बनाऊंगा, ऐसी खीर बनाऊंगा। पर महादेवपुरी की भावना प्रकट हुई जब हनुमान को भोग लग रहा था, जो महादेवपुरी को पता लगा कि ये भावना प्रकटी ने भोग लग रहा था, तो शर्मिंदा हो गए और चखे बिना चल गए बाजार में भगवान का भजन करने के लिए। भगवान को पता था ईश्वर भक्ति क्या इच्छा है, ईश्वर सर्वभूत का नाम भेजने से रविंद्र सको। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने जैसे कि आप देखते हो पढ़ा है हमारे स्कूल के कई मंदिरों में, पहले दरवाजा होता है फिर पर्दा होता है, उसके पीछे भगवान का पौधा होता है। तो भगवान ने क्या किया, एक खीर का प्याला जो कि ऑल्टर में था
उसको उठा कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्या हो गया, यहां भी पावर कट हो
गया। तो भगवान भगवान ने खीर का प्याला उठाकर छुपा दिया था पढ़ने के पीछे, और भगवान ने सपने में पुजारी को कहा, मैंने एक खीर का प्याला चुरा कर पढ़ने के पीछे रखा है, तुम इस प्याले को लेकर बाजार में जाना, यहाँ की महानंदपुरी के नाम में एक गैर भक्त भजन कर रहा है। भगवान ने खीर का प्याला चुराया। जब आप भगवान का दर्शन लेते हो, ये बस सोचो ये पत्थर की मूर्ति है, आप सोचो कि ये पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर की मूर्ति हमेशा रहेगी। या जो निराकार वादी है वो कहते हैं भगवान की भौतिक रूप में प्रकट नहीं हो सकते, वो ये नहीं जानते कि भगवान किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। और आज विग्रह मतलब भगवान विग्रह के रूप में प्रकट हो रहे हैं और आचार्य के द्वारा स्थापित की जाती है, और भगवान उनके आचार विग्रह में कोई अंतर नहीं, जैसे भगवान उनके नामों में कोई अंतर नहीं। तो पुजारी भी आश्चर्य हो गए थे ये सपना देखकर। खैर वो गए सुबह भगवान को जगाया, मंगल आरती 4:30 बजे, जैसे आप लोग मंगल आरती में आते हैं 4:30 बजे, कौन आता है मंगल आरती में, कौन कौन आता है 4:30 बजे? अच्छा, तो 4:30 बजे तो मंगल आरती होती है, तो पुजारी को 3:30 बजे जागना पड़ता है भगवान को जगाने के लिए। वगैरह तो पुजारी भी जागे और बड़े उत्साह से गए देखने की सपना सच था या नहीं। तो जब उन्होंने पर्दा खोला, क्या देखा, पर्दे के पीछे एक खीर का प्याला, जैसे भगवान ने सपने में कहा था वंचाई। तो ने कहा, कौन है इस भाग्यशाली पूरी जिसकी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुना? पहले इस विग्रह का नाम था राधा गोपीनाथ, तो एक घटना पीते के बाद उनका नाम क्या हो गया, क्या हो गया, राधा खीर चोर गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ खीर चोर। और टोरंटो मंदिर में वो सुंदर विग्रह है, उस विग्रह का उसका नाम क्या है, राधा खीर चोर गोपीनाथ। तो माँ पुजारी जी खीर का प्याला लेकर बाजार में गए, यहाँ कोई महानंदपुरी नाम का संत है क्या? महानंदपुरी ने सुना कि अपना नाम पुकारा जा रहा है, तो मैं वो महानंदपुरी। इस पुजारी ने कहा, तुम इतने भाग्यशाली हो, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। भगवान अपने शुद्ध भक्त के आभारी होते हैं, हर की चरण भगवान की सेवा करें, भगवान के चरते भक्त की सेवा करें। महानंदपुरी गए थे रघुना मंदिर में इस भावना के साथ कि भगवान की खीर चखने का मौका मिले, है ना, और चखने बिना वो निकल गए। भगवान ने क्या किया, अरे भक्त की खुशी के लिए खीर के प्याले को छुड़ा कर छुपा दे। तो पुजारी ने कहा पूरे सपने का, और कहा कि तुम इतने भाग्यवान हो कि भगवान ने तुम्हारे खीर का प्याला छुड़ा। महानंदपुरी नाचने लगे खुशी में, खीर चखी खाया और उन्हें धोना था तो मिट्टी का तोड़कर अपनी धोती के साथ लपेट दिया। फिर महानंदपुरी गए तो महानंदपुरी रेमना में जब थे, जहां भी वो जाते थे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। जैसे आजकल कलयुग के देवता जानते हो कौन है, फिल्मी कलाकार, सच बात है, क्रिकेट स्टार, खिलाड़ी, हरमा में तो क्रिकेट नहीं खेलते, इतनी लोग खेलते हो। तो प्राचीन समय में संतों को आदर दिया जाता था, इतना में जरूर होगा कि बर्मा देश में संतों को आदर दिया जाता है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उन्हें आदर दिया जाता है। मुझे कहा गया था कोई व्यक्ति 50,000 क्या पांच से 50,000 चार कमाता है, 25,000 चार मोहर महीने संत को देता है। मैंने कहा हमारे लोगों से सीख रहे थे, एक जो 50,000 कमाएगा 25,000 चार मुझे बोल करेगा, और एक हिंदू 50,000 कमाएंगे तो क्या कितना देंगे 5 पैसा। मैं मिडिल ईस्ट में था, तो मिडिल ईस्ट में आप जाओ तो हर 10 कदम में आपको एक मस्जिद मिलेगा। तो मैंने भक्तों से पूछा ये मस्जिद कौन बनाता, सरकार बना दिया? उन्होंने कहा नहीं, ये लोग बनाते हैं। जैसे वो धन कमाते हैं, पहले मस्जिद बनाएंगे फिर अपना घर बनाएंगे। हमारे हिंदुओं में क्या, पहले अपना घर बनाएंगे, अगली पीढ़ी का बनाएंगे, अगली पीढ़ी का बनाएंगे, फिर और कोई पता तो भगवान सच बात है कि झूठ है? बर्मा में भी सच है, मैं तो नहीं, इंडिया में सच है, यहाँ भी सच है, बर्मा इन लोगों का प्रभाव नहीं पड़ा था जिसकी खुशी के लिए भगवान ने किए कर काल चुराया था। वहां से पूरी जगह पूरी गए, वहां 80 किलो चंदन मिला उन्होंने, और उन्होंने एक सेवक भी दिया, और सेवक के साथ आनंदपुरी वापस लौटने लगे यमुना दौड़ जाना निकले। रास्ते में वो फिर से रुके यमुना में। उस दिन रात को गोपाल ने सपने में आदेश दिया आनंदपुरी को, भगवान गोपाल ने कहा आनंदपुरी में तुम्हारा बड़ा भारी हो कि तुमने मेरे आदेश के अनुसार पूरी यात्रा की पैदल ये चंदन लाने गए, पर मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, तुम ये चंदन को लेकर गोपीनाथ को चढ़ा दो। गोपीनाथ है यमुना के गुरु जी और गोपाल है गोवर्धन के गुरु जी। आनंदपुरी अपने उठे, पुजारी को कहा कि भगवान ने आदेश दिया है कि ऐसी चंदन गोपीनाथ के सेवा में लगाया जाए। पुजारी तो खुश हो गए, नाचने लगे, अगर आपको करा कर ऐसी केजी चंदन दे रहे आप तो खुश हो गए, तो बहुत खुश हो गए। फिर 3 हफ्ते के लिए बाद में पूरी बार रुके, और उन्होंने अपने खर्चे पर ये पुजारी को शिक्षा दी कैसे चंदन से भगवान को सजाना चाहिए। ये चंदन यात्रा हम मनाते हैं, ये आलम विधि किसके द्वारा, किसके द्वारा? आनंदपुरी के द्वारा। आज से लगभग 700 साल पूर्व हमारे कई केंद्र हैं, कृष्ण माता मंदिर वृंदावन में, दादा पादा साधी मंदिर, तो इस शुभ दिन पर कुछ कपड़े नहीं बनाते हैं भगवान को, पूरे शरीर को सजाते हैं किसके साथ। आजकल इंटरनेट पे दबाना है, और इंटरनेट पर आप राधा माधव का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, कृष्ण माधव का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, आपको पता है अनेक मूर्तियां हैं जिनका दर्शन प्राप्त कर सकते हो क्या इंटरनेट के द्वारा। तो ये चंदन यात्रा का उत्साह बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ भी मनाया जा रहा है। हाँ, 3 हफ्ते कब तक है?
कल
3 हफ्ते तक ये मनाया जाता है, भगवान को रोज चंदन के साथ सजाया जाता है। और मैंने बड़ी खुशी से देखा कि आपके राधा गोविंद जी में काफी चंदन लगा हुआ है, चंदन की कहीं ड्यूटी नहीं की पूजा अभी चंदन से अच्छी तरह अभी भी देखा कल भी आना कल आरती देना। तो क्षेत्र महाप्रभु जी ने भक्ति को सफल बनाने के लिए हमें 5 नियम दिए हैं, आप ये 5 नियम सुनना चाहते हो? पहला है शैंत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो। तो भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली। भगवान के नामों में अंतर है, है? आपके और आपके नाम में अंतर है,
है?
आप इधर बैठे हो, आपके घर में कोई टेलीफोन करेगा तो घर वाले क्या कहेंगे? मंदिर में गया है। तो भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। तो कहा गया है कि कलयुग में दोष ही दोष है। परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से, ये बताओ कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? कलयुग से सुखदेव गोस्वामी ने कहा कलयुग में दोष ही दोष है। प्रे कौन है इस कलयुग में? क्या है वो, कौन बताएगा क्या है कौन इस कलयुग का? जितने नगर गांव है सारे विश्व में सब जगह क्या फैलेगा? आज आप किसी किसी देश में चले जाओ विश्व के, आपको हरे नाम के
छुटकारा चाहिए तो क्या है उपाय?
भगवान के नामों का उच्चारण। तो आप सब जो इधर बैठे हो सबको जाप करना चाहिए। जाप करने के लिए बनिया सरकार टैक्स तो नहीं लगाती नहीं, ये तो नहीं करते जाप करके तो टैक्स मिलना पड़ेगा। टैक्स लगता है जाप करने में नहीं, तो फिर जाप करना चाहिए। माने एक दिन दे दो काम दिए किसके किसके लिए है, भगवान के नामों का उच्चारण करने में। तो एक निवेदन है, आप सब जगह बैठे हो कम से कम दो माला हरे कृष्ण मंत्र का रोज करने की जिम्मेदारी लो। क्या हो आप आया ना, तो मुझे बताओ कौन कौन भक्तियां उपस्थित हैं जो अभी रोज जाप नहीं कर रहे पर कल से शुरू करेंगे कम से कम दो माला जाप करने के लिए। आने भाई कितने भक्तों के पास भगवत गीता यथारूप है, पॉली में या हिंदी में या बल्कि में पास एक के पास आप में से कितने भक्त हो जो रोज भगवत गीता को पढ़ते हो? और चार पांच भगवत गीता में भगवान की वाणी है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने भक्त जो टीवी देखते हैं तो सब भाग रहे हैं। अगर कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और पूछे कितने लोग क्रिकेट मैच का कमेंट्री हो कितने सब देखते हैं, तो गीता को पढ़े। गीता में क्या है, किसका उपदेश है? गीता में भगवान का उपदेश है। किसके लिए? हम सबके सुधार के। और जैन महाप्रभु ने कहा हमें रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए। फिर साधु संघ का लाभ उठाओ, हर रविवार को आओ। जब प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की, पहले गीता की स्थापना की नियम में, तो प्रभुपाद जी ने रविवार संडे के प्रोग्राम की स्थापना की, जिसमें जो गृहस्थ भक्त हैं घर में रहते हैं जो नौकरी करते हैं धंधा करते हैं वहाँ से मैं एक बार आ सकते हूँ भक्तों की संगत में। तो रविवार को नियमित रूप से आप सबको यहाँ आना चाहिए, राधा गोविंद जी का दर्शन करेगा, राधा गोविंद जी के भगवत प्रणाम करो और प्रसाद खाओ, कीर्तन में उपस्थित रहो और उपदेश करो। तो आप सबसे निवेदन है आप इस शिक्षा का लाभ उठाइए। बहुत ही संसार में कदम कदम पर खतरा है, क्योंकि है खतरा या नहीं? जैसे कुछ साल पहले सुनामी आई थी, पता ना सुनामी, और थाईलैंड के राजकुमार सर्फिंग कर रहे थे और सुनामी आई एक नंबर। तो हर कदम में खतरा है, कुछ पता नहीं कि अंत कब आएगा, सच बात है कि झूठ? क्या आप लोगों को पता है? यहाँ हाँ मृत्यु आपसे पूछ कर आएगी नहीं, बुढ़ापा में पूछ के आएगा, बाल सफेद हो या नहीं आपको नहीं अभी नहीं, और मृत्यु बुढ़ापा रोग पीड़ा पूछ के आएगी। ये बहुत ही संसार एक जेल खाना है, हम सब कैदी है। अगर आप इस जेल खाने से निकलना चाहते हो तो क्या है आप इस भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाएं वो केवल पाप खा रहे हैं। आप जैसे कितने भक्त हो जो केवल कृष्ण प्रसाद खाते हो या भोग लगाकर खाते हो? कितने भक्त जो भोग लगाकर खाते हैं? बाकी लोग भोग नहीं लगाते नहीं, भोग ही लगाते। भगवान के लिए हमें प्रसाद के रूप में पहले अर्पण करना चाहिए, जो खा रहे हैं मां से नमक अच्छी से बचो, प्यार से बचो और मंत्र के चरण से भगवान के चरणों में अर्पण करो। इस प्रकार जीवन तो आपको खुशी चाहिए या दुख चाहिए? पक्का शांति चाहिए या शांति चाहिए, असली आनंद चाहिए या नकली आनंद। फिर भगवान की शिक्षा को अपना, भगवान के शरण अगर होगे तो ही अपने आप को कष्टों से छुटकारा दिला सकते। आप सब बोलिए
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।